चारित्र मोक्षम ना लेक्चर नंबर 14। हमने ये बात देखी चारित्रों की उपशमना में, उसके लिए जो तीन कर्म परिणाम होते हैं, तो पहला कर्म सात्विक गुणस्थान में होता है, दूसरा जो कर्ण का नाम भी अपूर्व कर्ण, गुणस्थान का नाम भी अपूर्व कर्ण आठवां, तीसरा जो अनिवृत्तिकरण है वो गुणस्थान भी अनिवृत्तिकरण है, नौवां गुणस्थान जो है उसका संख्यात बहुभाग बीतने पर, जो बाकी सब प्रोसेसेस चल ही रहे थे, अब यहाँ आने पर क्या क्या बातें होती है हमने देखा था। स्थिति बंध और बहुत ज़्यादा घटता है, क्योंकि पहले के असंख्या पर भान प्रमाण स्थिति बंध होते चला जाता है, और उसी दौरान वो क्रमकरण वगैरह भी बातें हमने देखी थी। क्रमकरण के अंत में आकर असंख्या समय प्रबंधों की उदीर्ण होने लगती है, और उसके पश्चात भी हजारों स्थिति बंध अपसरण होने के बाद वो देशघातीकरण होता है, यानी जो देशघाती प्रकृतियाँ अभी तक सर्वघाती देशघाती रूप से बनती थी, अब केवल देशघाती रूप से उनका बंध होने लगेगा, ये उसका अर्थ है। उसके बाद देशघातीकरण के बाद क्या होता है, तो हमने देखा अंतरकरण होता है। हाँ, ये रिवाइज करेंगे। अंतर होता है तो अंतर किसमें होता है, तो चारित्र मौखिक प्रकृतियों में होता है। चारित्रमों की कितनी प्रकृति है सत्ता में, तो अनंत अनुबंधी की विसर्जना की हो तो सत्ता में से नष्ट हो जाती है, और बाकी रिमेनिंग जो है 21 प्रकृतियां है, 21 प्रकृतियों में से यहाँ दो का ही उदय है, एक वेद का उदय है और एक किसी संज्वलन का उदय है। बाकी जो प्रत्यक्षारण प्रत्यक्षारण है, अन्य जो हस्यादी जो नौकोशा है, वो कोई यहाँ उदयभूत नहीं है। 19 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं है, दो वेद का नहीं है, हस्यादी छह का यानी आठ का नहीं है, और आठ दशाओं का भी नहीं है। इस तरह से अनंतानुबंधी तो चली गई, तो इस तरह से इतनी प्रकृतियों का उदय यहाँ नहीं है, उसकी बात चल रही। जो संज्वलन चार बनती उसमें से भी तीन का उदय नहीं है, एक का ही उदय है, यानी 19 का उदय नहीं है, दो प्रकृतियों का उदय है। नहीं लगे अभी, अभी क्या पोजीशन है उसको समझो। इसके उदय में बहुत सारे चेंजेस होने वाले, वो मैंने बताया भी था, क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, वो कहाँ से उदय होगा, क्या होगा, वो तो बात अभी आनी है। अभी तो अंतर का विषय चल रहा है, यहाँ मात्र जिसका उदय है वो क्रोध का उदय कैसे या मान के उदय कैसे, तो हम अभी क्रोध को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक पुरुष वेद और क्रोध का उदय ऐसा मान लेते हैं, वो दो का उदय है, बाकी 19 का अनुदय है। शपक श्रेणी में भी अंतर होता है, परंतु वहाँ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस है, क्योंकि वहाँ आठ जो कषाय है उसकी क्षपणा पूर्व में हो जाती है, बाद में अंतर होता है। अब उसका विषय यहाँ कंपैरिजन नहीं है, अंतर होता है वहाँ पर उसमें बहुत डिफरेंसेस है, पूरी उपशम श्रेणी शपक श्रेणी में वास्ट डिफरेंस है। अब यहाँ तो हम उपशम श्रेणी की बात करेंगे, 21 में अंतर होता है यहाँ, तो ये अंतर होता है तो अंतर के परमाणु जा जाते कहाँ है, ये अपना प्रश्न है। तो जो उदय रूप प्रकृति है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, जैसे स्त्री वेद का उदय है तो बंध तो उसका नहीं है, पर समझो संज्वलन में से मान का उदय है तो मान का बंध भी है। संज्वलन का किसी का भी उदय क्यों ना हो, बंध तो चारों का, परंतु वेदों में स्त्री वेद या नपुंसक वेद का उदय है तो बंध तो दोनों का नहीं है, बंध तो पुरुष वेद का। यानी किसका उदय है और उसके परमाणु कहाँ जाते हैं, इसकी चर्चा है। अब हम देखते हैं कि स्त्री वेद के उदय के सहित वाला जीव है तो उसके अंतर के परमाणु कहाँ चलेंगे, तो उसके अंतर वाले परमाणु उसके प्रथम स्थिति में भी आएंगे और वहाँ जो कोई जो संज्वलन का उदय रूप कषाय है उसमें भी चले जाएंगे प्रथम स्थिति में, और वहाँ बनने वाले पुरुष वेद और चार संज्वलन उसमें भी उत्कर्षण होकर रूप कर जाएंगे। वेद की पोजीशन एक एक की बात करके, एक स्त्री वेद है जो उदय रूप है परंतु बंध रूप नहीं है, तो उसके अंतर के परमाणु कहाँ जाएंगे, एक तो उसकी अपनी पहली स्थिति में, उदय रूप जो दूसरा कषाय है उसकी पहली स्थिति में, या उत्कर्षण होकर नए बनने वाले एक पुरुष वेद और चार संज्वलन, इस तरह से उसका अंतर का द्रव्य वहाँ चला जाएगा और वहाँ नीचे का अभाव हो जाएगा। अब संज्वलन में जो उदय रूप है उसकी बात करते हैं, उसके परमाणु कहाँ जाएंगे, उसके अपने उदय रूप प्रथम स्थिति में, जो कोई उदय रूप कषाय वेद है भले उसका बंध हो या ना हो, उदय रूप जो प्रथम स्थिति के जो है उसमें भी चले जाएंगे, परंतु जो अगली मात्र होने वाले उसमें नहीं जाने वाले, जिसकी प्रथम स्थिति बननी उसमें चले जाएंगे। और मान का तो अपना बंध होता ही होता है और अन्य तीन संज्वलन का भी बंध होता है और पुरुष वेद का भी बंध होता है, तो उसके संज्वलन के परमाणु ऊपर बनने वाले सभी में जाएंगे, अपनी प्रथम स्थिति में जाएंगे, और जो अन्य जो वेद का उदय है उसकी भी पहली स्थिति में जाएंगे। यानी इस तरह से अन्य अन्य कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। स्त्री वेद के ऊपर में नहीं जाएंगे क्योंकि स्त्री ऊपर वही जा सकते जिसका बंध है, स्त्री वेद के परमाणु ऊपर जाते समय पुरुष वेद और चार संज्वलन भी होकर ऊपर चले, यानी उसका उत्कर्षण भी और संक्रमण भी होकर ऊपर जाएगा, नीचे आ सकते हैं। नीचे स्त्री वेद का उदय है तो स्त्री वेद के अपने प्रथम स्थिति में और स्त्री वेद के परमाणु जो संज्वलन उदय रूप है उसके पहली स्थिति में आ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, बेसिक ये बात बताना है।
इस
कौन से
स्त्री वेद का उदय है नीचे प्रथम स्थिति पुरुष के ऊपर
ऊपर जाते समय पुरुष वेद रूप होकर उदय में जाएंगे, ऊपर जाएंगे। स्त्री वेद के जो अंतर के परमाणु है वो ऊपर जाएंगे पर किस में चले जाएंगे, पुरुष वेद और चार संज्वलन में जाएंगे, यानी वो तो उत्कर्षण है, उसकी स्थिति भी बढ़ेगी और वो संक्रमित अन्य प्रकृति रूप भी हो जाएगी। संज्वलन में ही जाएगा, उत्कर्षण को बंधने वाले सभी में चले जाएंगे, संक्रमण सभी में होता है, ये आपस में एक दूसरे में संक्रमण तो होता ही रहता है। संक्रमण के लिए कंडीशन क्या, बंधने वाले भी होना चाहिए, पर उत्कर्षण होकर जो पहली स्थिति में आते हैं वहां बंधने की कंडीशन नहीं है। जैसे स्त्री वेद के अपने भी प्रथम स्थिति में आ रहे, स्त्री वेद का बंध नहीं है। समझो क्रोध का उदय है तो क्रोध के अंतर वाले परमाणु स्त्री वेद के भी प्रथम स्थिति में जा रहे हैं, वहाँ का संक्रमण की यानी वो कंडीशन नहीं बन रही, वहाँ उत्कर्षण होकर उसके पहली स्थिति में जा रहे हैं। अब इसको फिर पढ़ते हैं, हमने तीन कॉम्बिनेशंस पढ़ लेते, देखो पेज नंबर 173 से बात ये शुरू हुई थी। अब वहाँ उदय किसका हमने मान लिया, स्त्री वेद या पुरुष वेद या नपुंसक वेद का उदय है और किसी एक कषाय का उदय है, उस सही श्रेणी चढ़ने वाला है उसका, तो उसका उदय है और उसके उदय है उसके पुरुष वेद और अन्य तीन संज्वलन का क्या होता है ये वहाँ बताया। जिसको स्त्री वेद और एक संज्वलन का उदय है उसके पुरुष वेद और अन्य तीन संज्वलन के परमाणु कहाँ जाते हैं, उसकी ये कॉम्बिनेशन है, तो उसके परमाणु कहाँ जाएगा, तो देखो इन चार प्रकृतियों के द्रव्य को उत्कर्षण करके तो तत्काल जो अपना उसी प्रकृति का बंध हुआ पुरुष वेद और तीन संज्वलन उसकी आबादा को छोड़कर उसके द्वितीय स्थिति में प्रथम निषेक से लेकर यथा योग्य अंत तक निक्षेपण करता है और आकर्षण करके उदय रूप जो अन्य दशा है उसकी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है। ये तो क्लियर हो, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, जिनका बंधन नहीं है केवल उदय है, ऐसे कौन से हैं? स्त्रीवेद और नपुंसक वेद। बंधन नहीं है मात्र उदय, आप कहेंगे संज्ञान मार्ग को भी ले लो, जिसका उदय है बंधन भी, बंधन तो चारों संज्ञान का है, जिसका बंधन ही मात्र उदय है वो केवल दो प्रकृतियों में लागू होगा, कौन से? स्त्रीवेद और नपुंसक वेद। उसके अंतर संबंधी द्रव्य को आकर्षण करके अपनी प्रथम स्थिति में, उनका अपना उदय चल रहा है, उसकी प्रथम स्थिति बनने वाली है, उसमें अपनी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है और उत्कर्षण करके वहाँ बनने वाली अन्य कषाय की द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है, अन्य ने पुरुष वेद और चार इसमें निक्षेपण करता है, तथा अपकर्षण करके उदय रूप अन्य क्रोधादि कषाय की प्रथम स्थिति में संक्रमण होता है, यानी स्त्री वेद का द्रव्य अपनी प्रथम स्थिति में ही जाता है और वहाँ जो संयोजन का उदय है जिसका उसमें ही प्रथम स्थिति में चला जाता है। ऊपर तो चारों में जाता है क्योंकि चारों का बल है। अभी तीसरा कॉम्बिनेशन, जिनका बंध भी है और उदय भी पाया जाता है, ऐसे कौन? पुरुष वेद और कोई संज्वलन, कोई भी बंध भी और उदय भी, उनके अंतर संबंधी द्रव्यों को अपकर्षण करके उदय रूप प्रकृतियों की प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है, यानी पुरुष वेद का द्रव्य पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में और संज्वलन की प्रथम स्थिति में जाएगा, वैसे ही वो संज्वलन का द्रव्य पुरुष वेद की प्रथम स्थिति और अपनी प्रथम स्थिति में जाएगा और उत्कर्षण करके वहाँ बनने वाली प्रकृतियों की द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है, पुरुष वेद और चार संज्वलन बन रहा है उसमें चला जाए। यहाँ भी अन्य प्रकृति की प्रथम द्वितीय स्थिति में उत्कर्षण और अपकर्षण के वश से अन्य प्रकृति में परिणमने रूप संक्रमण होता है ऐसा विशेष जानना, पर अन्य कौन सी प्रकृति रूप होगा? वहाँ बनने वाली अन्य में संक्रमण में बनने की कंडीशन, परंतु प्रथम स्थिति में जो निक्षेपण होता है आकर्षण करके उसमें वो बनने वाले का नियम नहीं है। जिसकी प्रथम स्थिति है, जिसकी यानी एक वेद की और एक दशा की, उसमें तो निक्षेपण होता है सबका और ऊपर जाने के लिए बनने वाले में उत्कर्षण होता है, ये उसका बेसिक कंडीशन ही है। उत्कर्षण होकर ऊपर जाता है तो बनने वाले भी जाते हैं, वो जो यथा योग्य संक्रमण होकर उसमें चली जाती है। अब चौथा कॉम्बिनेशन 247 वो हमने पढ़ा नहीं था, उसको पढ़ेंगे अभी ऐसा लेते हैं जिसका बंध भी नहीं और उदय भी नहीं। उदय भी नहीं ना कोई वेद है ना संज्वलन है, ये क्या हो सकता है? फिर से सुनो जरा, जिसका बंधन भी नहीं है और उदय भी नहीं, ऐसे कौन सी प्रकृतियाँ यहाँ है? जैसे जिसकी उदय की विच्छित्ति हुई है, ऐसे हाथ का सब बंध की भी विच्छित्ति हुई है। हाँ, ये अप्रत्याख्यान चार, प्रत्याख्यान और चार और हास्यादि छ, बंध भी नहीं है उदय भी नहीं है। फिर से आठ कषाय और छह नौ कषाय, क्योंकि वेद में से किसी का उदय हो सकता है, चार संज्वलन में से किसी का उदय हो सकता है, यह कंडीशन क्या है? जिसका बंध भी नहीं उदय भी नहीं, परंतु सत्ता में हाँ नहीं ले सकते, बंध भी नहीं उदय भी नहीं है। हाँ नहीं, पर यहाँ इनकी बात की है, प्रत्याख्यान अपर प्रत्याख्यान और हास्यादि छह नौ कषाय, वो भले वो वेद का उदय है, श्री वेद के उदय है और पुरुष वेद का बंध है, ऐसे कॉम्बिनेशन हमने देखा। वो तो उदय हमने दूसरे कॉम्बिनेशन में लिया, जिनका बंध नहीं मात्र उदय है वो वहां लिया था, उनका उदय हो सकता है ना, उनका वहां उदय हो सकता है, पर आप ऐसा कहते हैं कि जब पुरुष वेद का उदय है तब स्त्री वेद के लिए उसका बंध भी नहीं उदय नहीं, ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो उसका भी द्रव्य कहाँ जाएगा? पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में और बनने वाले पुरुष वेद के ऊपर में, बराबर। अब यहाँ किसकी बात चल रही है? छः नौ कषाय और आठ कषाय, प्रत्यय कहना और इंचार्ज और अप्रत्यय कहना और इंचार्ज, ख्याल में आई बात? हमने देखे थे ना उनकी, देखो अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषाय की बंध विच्छित के उदय विच्छित कहाँ हुई थी याद है? अप्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और चौथे, चौथे में उदय भी था बंध भी था, तो विच्छुति चौथे में कहीं प्रत्यय अनावरण की, हाँ पांचवे में, और हास्यादि छह की, अभी सबको एक साथ मत लो, हाँ बंद विच्छुति अरति और शोक की छठे में बंद विच्छुति हुई, और हास्यादि चार की बंद विच्छुति आठवें के अंत में हुई, और छह की उदय की विच्छुति आठवें के अंत में हुई। यानी यहाँ ना इनका बंद है ना उदय है, ऐसे ये प्रकृतियाँ हैं। अब इनका क्या होता है उसकी बात बताएंगे। ये चौथा कॉम्बिनेशन है 247 की टीका 174 पृष्ठ में लास्ट दो लाइन, बंद और उदय से रहित ऐसे जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय, कषाय ने कर्म, कर्मों की बात है, उनके नाम भी वही है, और हास्यादि छह नौ कषाय कर्म की बात है यहाँ पर, उनके अंतर संबंधी द्रव्य का अपकर्षण करके उस काल में उदय रूप जो अन्य प्रकृति, कौन सी उदय रूप है? एक वेद और एक कषाय संज्वल, यानी इनका द्रव्य का, क्योंकि उनमें आवली मात्र प्रथम स्थिति छोड़कर अंतर किया है, उनका द्रव्य कहाँ जाएगा? उदय रूप में, एक वेद में एक कषाय में, और वहां बदने वाली में ऊपर भी चला जाएगा। देखो तद्रूप परिणाम होता है, संक्रमण होता है ना, उस रूप परिणमित होता है, तथा उत्कर्षण करके उस काल में बंधने वाली अन्य प्रकृतियों की द्वितीय स्थिति में संक्रमण होता है। कौन सी बन रही है? एक पुरुष विचार संज्ञ, उसमें ज्यादा तद्रूप परिणमन होता है। इस तरह प्रकृतियों के जिन निषेकों का अभाव करके अंतर किया, उनके द्रव्य का निक्षेपण करता है, निक्षेपण करना नहीं डालना, कुछ उदय रूप प्रकृतियों में डाली है जो इनकी प्रथम स्थिति बनी उसे में डाले, और कुछ बनने वाले में ऊपर, सामान्य से इतना हम उसको कह सकते हैं। अब इसी के लिए ये कुछ नियम बता रहे हैं, यहाँ विशेष जानना, बंध रहित प्रकृतियों के द्रव्य को तो किसका बंध नहीं है, ना स्त्री वेद का है, ना नपुंसक वेद का है, ना आठ कषायन का है, ना छह कषायन, ये बंध रहित सारी प्रकृतियां हैं, उनके द्रव्य को तो अपनी द्वितीय स्थिति में नहीं डालता। क्या कहा? जिसका बंध नहीं है उनकी प्रकृतियों को अपनी द्वितीय स्थिति में नहीं डालता, क्योंकि उनका बंध नहीं है तो उसके उत्कर्षण होकर अपनी अपनी स्थिति में नहीं जाएगा, और उदय रहित प्रकृतियों के द्रव्य को अपनी प्रथम स्थिति में निक्षेपण नहीं करता। जिसका उदय नहीं है उसकी प्रथम स्थिति तो आवली प्रमाण बनने वाली है, वहां भी उसका निक्षेपण नहीं होता, तो पहली स्थिति में कहा जो उदय रूप प्रकृतियां वहां उसका निक्षेपण होगा। जिसका उदय नहीं है उसके प्रथम स्थिति में उनका अपना द्रव्य भी नहीं जाने वाला, उदय रूप में चला जाएगा। प्रथम स्थिति तो अंतर आयाम के नीचे है, इसलिए वहां देने में स्थिति घटती है, इसलिए अपकर्षण का, और द्वितीय स्थिति अंतरायाम के ऊपर बढ़ती है, इसलिए वहां द्रव्य देने पर स्थिति बढ़ती है, वहां उत्कर्षण का। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल द्वारा अंतर करने की समाप्ति होती है। ये पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में निक्षेपण करते 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 ये अंतर हो गया, क्योंकि यहाँ देखो एक ग्रीन में हमने दिखाया है कि यहाँ की निषेक आधे अधूरे यहाँ ऐसे कटे ऐसे दिखाए, तो कुछ द्रव्य तो यहाँ गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ उत्कर्षण होकर बनने वाले में चला गया, इस तरह से इसका एक समय में थोड़े आया, दूसरे समय में, तीसरे समय में, ऐसे अंतर्मूर्त में अंतर करने का कार्य पूरा हो जाता है। यहाँ अंतरकरण के प्रथम समय से लेकर प्रथम स्थिति, क्या कहा, अंतर करने का जो कार्यकाल है उसके प्रथम समय से लेकर प्रथम स्थिति और अंतरायाम का प्रमाण जितना का उतना रहता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, समझाती मैं क्या बताना चाहती हूँ। अभी अंतर करने को स्टार्ट किया, तो यहाँ इतनी स्थिति छोड़कर ऊपर के नीचे को उनका यहाँ अंतर कर देगा, यहाँ से भी साइड में से इतना सब द्रव्य निकाला, ये पहली वाली है नीचे ऊपर सर्वत्र देवी। तो ये पहला समय है। दूसरे समय में क्या पोजीशन है, यहाँ का एक निषेध बन जाएगा, तो यहाँ का एक निषेध बन जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, परंतु ये अंतर और प्रथम स्थिति उतनी की उतनी बनी रहेगी। उसका अर्थ क्या है, यहाँ का एक निषेध अंतर में एंटर हो जाएगा और यहाँ का एक नीचे का निषेध गल कर चला जाएगा, प्रथम स्थिति भी उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि जो अंतर होने वाला एक निषेध इसमें चला जाएगा। फिर से मैं ये वाक्य पढ़ती हूँ, आपको देखो गौर करोगे, ये इस पैराग्राफ की चौथी और छठी लाइन, यहाँ अंतरकरण के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक ये अंतरकरण का कार्य चलेगा, तो पहले समय से लेकर प्रथम स्थिति और अंतरायाम का प्रमाण जितना का उतना रहता है। ना प्रथम स्थिति छोटी होती है, आप कहेंगे नीचे से गल रही है ना, अब गल रही है तो ये जिसका अंतर अभी थोड़ा निकला है वो नीचे के यहाँ आ जाएगा, वो पूरा नीचे बन जाएगा, और ऊपर का द्वितीय स्थिति का जिसका अंतर नहीं किया था उसको अंतर में वो समा जाएगा, अंतर भी उतना का उतना होगा, पहली स्थिति भी उतनी की उतनी रहेगी। नीचे उदयावली से एक समय छूट कर चला जाएगा और अंतर का एक निषेध प्रथम स्थिति में आएगा और द्वितीय स्थिति का एक निषेध अंतर में आएगा। एक घटेगा ना, हमने कहा ना वो अंतर में आ जाएगा, यानी इसका एक निषेध अभाव होकर वो अंतर का निषेध कहलाएगा, कम हो जाएगा, ऊपर तो बहुत पड़ा है अंतर, बड़ा बड़ी साधन पड़ा है, आकार नहीं। देखो इसमें से थोड़े परमाणु गए थे ना पहले समय में, अब यहाँ तो एक निषेध, तो ये तो उदय में होकर निकल गया। अभी मान लें ये गिनों ने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मान लेते हैं 16 है मान लीजिए, तो एक निषेध गल गया उदय रूप होकर, तो 15 रहेंगे, पर ये जो आधा अधूरा कट हुआ है वो पूरा होकर यानी उसमें द्रव्य दिया जाएगा ऊपर से, जो अंतर का द्रव्य उसमें देकर वो पूर्ण निषेध प्रथम स्थिति का बनेगा। द्वितीय स्थिति का निषेध है वो उसका द्रव्य छूट कर उसको अंतर में समा दिया जाए, यानी वहां से द्रव्य अभाव किया जाए, यानी प्रथम स्थिति भी उतनी की उतनी रहेगी, अंतर भी उतना का उतना रहेगा, द्वितीय स्थिति में से ही एक एक निषेध गल जाएगा नीचे। उसमें भी ऐसा होगा क्योंकि अंतर करने के पश्चात ये स्थिति होगी कि यह अवय और एक अंतर होगा, ये रहेगा घटेगा घटेगा, उसका एक एक निषेध घटेगा। तो फिर से इस वाक्य को पढ़ो, देखो यहाँ अंतरकरण के प्रथम समय से लेकर, ये द्वितीय उपशम के बारे में इस बार ऊपर ही आपकी चर्चा हो रही थी, घटता है तो क्या होगा, लास्ट में ये पोजीशन होगी आवली प्रमाण और अंतर समय, तब तक तो ऐसा ही होगा, इसका एक निषेध बन जाएगा उसमें अंतर का एक निषेध इसमें एंटर हो जाएगा। फिर से पढ़ती आप इसको गौर से सुनना, नहीं आना वो बढ़ती जाएगी, अभी जब उसका क्रोध वेदर काल चालू हो जाएगा तब उसका कम हो जाएगा, फिर उसमें और माया की मान की सब परमाणु आने वाले हैं, वो अभी अंतर समाप्त करने की चिंता मत करो, बहुत लंबा अंतर है। अभी बहुत सारे प्रोसेस करने बाकी है, देखो देखो अभी अंतर आए, ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ, यहाँ अंतरकरण के प्रथम समय से लेकर प्रथम स्थिति, यानी प्रथम स्थिति जितने की उतनी रहने वाली, उसका अर्थ क्या है, एक निषेध गल जाएगा एक निषेध ऐड होगा, और अंतरायाम का प्रमाण भी जितना का उतना है, तो अंतरायाम नीचे का निषेध प्रथम स्थिति में एंटर हुआ तो द्वितीय स्थिति का एक निषेध अंतरायाम में एंटर हुआ, एंटर हुआ ना उसका अभाव कर दिया। जब उदयावली का एक समय व्यतीत होता है तब गुणश्रेणी का एक समय उदयावली में आ मिलता है, और तभी गुणश्रेणी में अंतरायाम का एक समय मिलता है, और तभी अंतरायाम में द्वितीय स्थिति का एक निषेक मिलता है, यही तो हमने देखा ना। नीचे का निषेक गल जाएगा, अंतर में जो है वो इसमें एंटर हो जाएगा, क्योंकि पुण्य श्रेणी अभी थी ना, यहाँ भी पुण्य श्रेणी का टॉप भी अंतर में जा रहा है, परंतु कोई उसमें एंटर हो जाए, ये अभी पुण्य श्रेणी रूप से रचना है, प्रथम स्थिति पुण्य श्रेणी रूप से, तो उसमें एक निषेक उसमें आ जाएगा, पुण्य श्रेणी में आ जाएगा, और बाकी ऊपर का एक निषेक द्वितीय स्थिति का अंतर में आ जाएगा। यानी प्रथम स्थिति भी उतनी की उतनी, अंतर भी उतना का उतना, और द्वितीय स्थिति का एक एक निषेक नीचे नीचे आ जाएगा। नहीं, अभी इसमें क्रोध का वेदक काल है, मान का वेदक काल है, माया का वेदक काल है, लोभ का वेदक काल है, सूक्ष्म पुष्टि करने का काल है, अभी बहुत सारे अंतर्मुख इसमें जाने वाले हैं, नई नई निषेक रचना होने वाली है। हाँ, अभी अभी चिंता मत करो, पहले आगे सब सुन लो, आपका समाधान हो जाएगा, क्योंकि अभी बाकी जब ऊपर जब पड़े हैं परमात्मा ने वो क्रम से एक के बाद एक आने वाले हैं। अभी तो क्रोध के वहाँ प्रथम स्थिति बनी है, क्रोध वेदक काल समाप्त होने पर मान की पहली स्थिति बनेगी। अब वो कैसे बनती है, क्या बनती है, मान से सही चढ़ने वाले के, क्रोध से ही चढ़ने वाले, माया से ही चढ़ने, सब में जो डिफरेंसेस है वो तो हम बाद में देखेंगे। स्टार्टिंग में क्या क्या होता है क्रोध से ही चढ़ने वाले की, उसकी बात पहले करेंगे। उसमें भी ऐसी बात होगी, क्योंकि अंतर करने के बाद ये पोजीशन होगी कि उदय रूप की एक अंतर्मुख और बाकी के आवली रूप, जो आवली रूप है वो उच्चिष्ट यानी वो जो है क्यों संक्रमण करके वो उदय में आकर आवली में नष्ट होने वाला है। मिले अभी अभी मिलेगा, अंतर करने के बाद वो नष्ट हो जाएगी आवली में, अभी तो मिल रहे समय। इस तरह द्वितीय स्थिति ही घटती है, प्रथम स्थिति और अंतरायाम जितना का उतना रहता है ऐसा जानना, वो सब में होगा इस तरह। और जब अंतर करने का कार्य पूरा हो जाएगा तब पोजीशन क्या होगी, इन दो की प्रथम स्थिति अंतर हो और बाकी की एक अवली, ये जो अवली वाला है वो नीचे का जो निषेक है वो उदय रूप होकर उदय में आ जाए, जो उदय रूप जो अन्य दशा या वेद है उस रूप होकर जिसको हम युग संक्रमण कहते हैं वैसे वो उदय में आकर नष्ट होने वाले, वो अवली प्रमाण रहेंगे। अभी तक तो अवली प्रमाण रहेंगे, क्योंकि अवली प्रमाण इसलिए रहेंगे क्योंकि पूरा यहाँ अभाव तो एक समय में तो होता नहीं, अभाव होने के लिए कुछ समय लगेंगे ना, उसके अंतर्भूत लगेगा, तो बाय द टाइम वो इसमें आते रहेंगे, नीचे नीचे आते रहेंगे। अब यहाँ 176 पृष्ठ पर आते हैं, देखो अब यहाँ अंतर करने का कार्य पूरा हुआ, अब यहाँ बहुत सारी यानी अनेक प्रोसेसेस एट ए टाइम चालू होने वाले, इसका भी नाम करण है। तो कहते यहाँ 7 करण युगपत प्रारंभ हो गए, ये करणों के नाम यहाँ लिखे, देखो 7 करण प्रारंभ होते हैं ना, ये 4 करण देखेंगे, हाँ 4 लगाएंगे। ये अंतरकरण के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, या कोई प्रश्न है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, जैसे अनंतानुगति में विसंयोजना होती है, जैसे अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान वगैरह में होती है क्या, तो बिल्कुल नहीं होती, उनमें अप्रशस्त उपशम वो सत्ता में पड़े थे, उदय संज्वलन रूप से आ रहा था, जब तक उनकी क्षपना नहीं होती है क्षपक श्रेणी में तब तक वो सत्ता में बने रहते, मात्र अनंतानुगति की विशेषता है उसी में विसंयोजन हो सकता है, और वो विसंयोजन भी हमने देखा था चौथे पांचवें स्थान कहीं पर भी हो सकता है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यदि वो जीव मिथ्यात्व में जाता है तो फिर दोबारा अनंतानुगति का बंध और वो सत्ता में हो जाता है, इसलिए उसका नाम विसंयोजन है। वो स्पेशल ये अनंतानुबंधी की विशेषता है, प्रत्येक प्रकृति का अपना स्वभाव अलग अलग होता है, उसके अनुसार उसका कार्य होता है, प्रत्येक अनप्रत्यक्ष में ऐसी कोई बातें नहीं होती।
योजना का जो कार्य है तो हमने देखा था कि बीस योजना में हमने साल सोची के परमाणु अप्रत्याशी होकर नष्ट हो गए,
नष्ट हो गए अपने रूप से, नष्ट हो गए
रूप से नष्ट हो गए। ऐसे ही अप्रत्याशी प्रत्याशी वर्ण सब में वो ट्रांसफर हो गई आपका वर्ष दर्शन में रहती है
संयोजना, इसलिए कहते हैं कि उसकी फिर दोबारा संयोजना भी हो सकती है मिथ्या जाने
ऐसे
दोबारा
बन जाएगी
वो है ना सत्ता में, सत्ता में कहा नष्ट हुई, सत्ता में से नष्ट होकर फिर से बनने की बात थी। प्रत्यागन अप्रत्यागन सत्ता में बनी है, अब कहते हैं उसका उदय नहीं है। अभी जो मुनिराज है उसके अप्रत्यागन प्रत्यागन का उदय नहीं है, वही चीजें चौथे में आएंगे पांचवें में आएंगे सब जो मिथ्या में चले जाएंगे तो उनके सभी कर्मों की सत्ता हो जाएगी, उदय भी हो जाएगा उनका, बंद भी हो जाएगा नया, तो सत्ता में से नष्ट हो ही नहीं थे वो।
सत्ता में से जैसे जब सपक ग्रहण करेगा
तब करेगा
तो तब वो सत्ता में से नष्ट होगी, लेकिन काफी उसकी संयोजना भी होगी।
अरे वो शपक शनि वाला रिवर्सेबल नहीं है, वन वे ट्रैफिक है वो, उसकी एक बार क्षपना होने पर फिर दोबारा उसका बंद होने का या फिर संयोग होने का सवाल नहीं। हाँ भाववासन नहीं हुआ। अच्छा और प्रत्याख्यान आवरण का यहाँ नवे गुण स्थान में बंद है कि उदय है दोनों? प्रत्याख्यान आवरण का क्या है? ना बंद है ना उदय है। आचार्य छोड़ उपशम का क्या है? न बंद है न उदय है। उनकी बात यहाँ हो रही है, ये चौथे कॉम्बिनेशन में उसकी बात थी, न बंद है न उदय है। है नहीं तो सत्ता में है ना, और उसका अंतर भी करना है। है नहीं, ये नहीं सत्ता में नहीं, कहाँ कहाँ बंध में नहीं है उदय में नहीं है, सत्व पड़ा है, सत्व पूरा पड़ा है, तो वो सत्ता में है तो उसमें अंतर कैसे करेंगे? सत्ता में है तो दूसरे निषेक से ऊपर सर्वत्र पड़े हैं, उदय रूप होते होते अन्य रूप से होकर उदय में आए, इसको शिव संक्रमण कहते हैं। सत्ता में पड़े है, बिल्कुल पड़े है। जो उदय रूप प्रकृति की प्रथम स्थिति में जाएंगे, बंधने वाले की दूसरी स्थिति में, इस तरह से उसका अर्थ कर सकते हैं। वही तो कहते हैं कितना भी काल नहीं, अंतरकरण का जो काल है उसकी बात, अंतरकरण के काल तक ये पोजिशन है। अंतर जब पूरा हो जाएगा तो कई अन्य घटनाएं घटने वाली है जो ये सात कर्म से बताने वाली है। यहाँ क्या क्या अंतर हुआ उसके नेक्स्ट समय से क्या होगा ये बात है। अंतर हो चुका है देशाधिकरण हुआ, अंतरकरण हुआ, तब अंदर बोल, क्योंकि उसके अंदर भी स्थिति बंधा अनुसार हजारों 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 बार होते रहे। देखो इसके लिए सबसे अंत में जाके अल्पभूत को बताया, कौन से अंतर मूल छोटे है, कौन से कितने बड़े है, उससे कितने गुना है, कितना छोटा है, कि विशेष अधिक है, थोड़े थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे हैं, शायद उसको देखने के लिए टाइम भी नहीं मिलने वाला है हमको। देखो कितने हैं अल्पभूतों में बता देती हूँ आपको, जहाँ चारित्रम उपशमना समाप्त होगी 89, 97, 98 अल्पभूत होता है, 259 पेज पर लास्ट है उसका, तो किससे क्या कितने गुना है वो सब छोटे अंतर उनसे लेकर वहाँ जो कुछ है वो सब के अंतर हुआ अल्पभूत होता है, किससे क्या कितने गुना है वो सब ख्याल में आता है। पेज नंबर 259 जहाँ चारित्रम उपशमना समाप्त होती है वो लास्ट प्रकरण पूरा अल्पभूत का है। ये अल्पभूत शुरू हुआ था पेज नंबर 248 से, 248 से लेकर 259 तक अल्पभूत की बातें हैं। हाँ और ये अगर कम होता है तो बाकी अपने जो सिद्धांत ग्रंथों में बहुत सारे अल्प बोध हुए हैं। हमारा आगम तो इतना भरा पड़ा है, क्या करें, टाइम नहीं ना पढ़ने में। क्या होता है, समझता नहीं तो जीव को अरुचि हो जाती, छोड़ देते। क्यों नहीं समझे, ऐसा ट्राई करना हम इसमें, अरे धंधे में कितना ट्राई करते हो, क्यों नहीं फायदा होता है, बिल्कुल डटे रहेंगे उसमें, कितना दिमाग लगाते हो, यहाँ कहाँ लगाने, इसमें क्या फायदा होगा, पैसा थोड़े ही मिलेगा, फायदा कितने गिनते हैं, पैसों से फायदा होता है, किस सुख होता है, अरे रोग के परिणाम तो है, रक्षा करने के भय के परिणाम भी है उसके, और कहाँ जा रहे हैं तो कहाँ पड़ेगा उसकी कितनी चिंता है, कमाने की भी चिंता, इतना कमाए तो भोगना तो पड़ेगा कि नहीं, भोगने की भी चिंता, हाँ संभालने की, भोगने की, और क्या क्या, फिर भी उसके पीछे चलता है, क्योंकि उसने सुख माना है, तो पैसा मिलने पर ख्याल आता है इसमें सुख नहीं था, जब नहीं था तो लगता था इसमें बहुत सुख है, बच्चों को लगता है बड़े होने पर सुख है, क्यों, बड़े होने पर वो झंझट ख्याल में आता है। हाँ कहाँ कौन से पेश करते हैं, कितना समय बाकी है, ये सात कर्म परिणाम बताएंगे अभी, 176 पेज पर आना। देखो अभी अंतर करने का कार्य हो गया है, अब यहाँ अनिवृत्तिकरण का संख्या दो भाग गिर भी गया, अभी भी संख्या का भाग शेष है, अनिवृत्तिकरण का संख्या का भाग शेष है, अभी भी एक वेद का उदय है, एक कषाय का उदय है, अभी भी सवेद भाग चल रहा है उसका, तो अब यहाँ जाके अंतर के बाद इमीडिएट नेक्स्ट समय में क्या क्या बातें होगी, यहाँ सात बातें युगपत प्रारंभ होने वाली है, उसको पढ़ते हैं हम 176 पेज पर। अंतर करने के पश्चात उसके अनंतर प्रथम समय में, अनंतर यानी अनंतर प्रथम यानी इमीडिएट नेक्स्ट समय, सात कर्णों का युगपत प्रारंभ होता है, ये सभी बातें एट ए टाइम चालू हो जाती है, वहां पहले अंतर करने की समाप्ति तक मोह का दारुलता समान द्विस्थानगत बंधन हृदय था, बंधन हृदय कैसा था, द्विस्थानगत। अब क्या होगा, लता समान एक स्थानगत बंधन हृदय होने लगता है, ये बंधन होने लगता है वो एक कर्ण, और एक स्थानगत उदय होता है ये दूसरा कर्ण, पहले कैसा द्विस्थान था, देशघाती था परंतु द्विस्थान गत था, और एक स्थानीय होता है, मोहनीय का बंध भी लता समान एक स्थानीय होता है, और उसका उदय भी लता समान एक स्थानीय होता है, वो सब होते होते इस पॉइंट पर ये बात, यहाँ तक ये बात, इतना अब उसका जो अनुभव घटा है वो लता भाग को खोकर उदय में आता, देखो अभी तक कैसा द्विस्थानगत बंधर उदय था, उदय भी द्विस्थानगत था, अब लता समान एक स्थानगत बंधर और उदय होने लगता है, एक स्थानगत है ना वो लता वाले जो हीन अनुभव वाले स्पर्धक है मंद वाले, उनका उदय चल रहा है, इसलिए दो कर्म तो ये हुए, इसको कर्म कहते हैं, पहले मोह का स्थिति बंधर बनने वाली स्थिति, हमने देखा स्थिति बंध आश्रम होते 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 क्रमकरण होते होते पहले के असंख्यात विभाग, फिर भी घटते घटते फिर भी उसको असंख्यात वर्षों का भी बंध होता था, अब यहाँ जाके स्थिति बंध असंख्यात वर्षों का होता था, अब संख्यात वर्ष मात्र होने लगा, सो यह एक कर्म, मोहनी का संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति बंध का हुआ अंतर करने के नेक्स्ट समय में, तब तक कितना था, असंख्यात वर्षों का, बाकी अभी भी असंख्यात वर्षों के हो रहे, कौन से ज्ञानावरणादि नाम गोत्र वेदनीय सब, उनका अभी संख्यात वर्षों का बंध शुरू नहीं हुआ है, यहाँ केवल मोहनीय का बंध, मोहनीय में क्या बंध रहा है, पुरुष वेद और चार संघ, संख्यात वर्षों का, संख्यात वर्ष कहने से संख्यात हजार संघ, हाँ तो एक कर्म तो यह हुआ, पहले चारित्र मुनि की प्रकृतियों का परस्पर में जहाँ तहाँ संक्रमण होता है। ये अर्थ समझ में, कषाय नो कषाय में, नो कषाय कषाय में, क्रोध मान माया लोग पूरे अलुलट पुलट कोई भी किसी में भी संक्रमण होता है। अब अनुपूर्वी संक्रमण होने लगा निश्चित क्रम से, यानी वो पर्टिकुलर प्रकृति पर्टिकुलर प्रकृति में ही संक्रमित होगी, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होगा। क्रोध है वो मान में ही जाएगा, मान है माया में ही जाएगा, माया है वो लोभ में ही जाएगा, लोभ को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इसको कहेंगे वो अनुपूर्वी संक्रमण। अभी प्रथम स्थिति में कौन बचा है संक्रमण होने के लिए, अंतर में भी कुछ नहीं बचा है, अभी जो कुछ बचा है वो द्वितीय स्थिति में बचा है। संक्रमण अभी कहाँ होगा, द्वितीय स्थिति में होगा। फिर से देखो, इसमें ऐसा नियम है कि स्त्री नपुंसक वेद का तो पुरुष वेद ही में, अनुपूर्वी संक्रमण में कौन सी प्रकृति किस में जाएगी, स्त्री वेद और पुरुष वेद के परमाणु, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के परमाणु पुरुष वेद में ही जाएंगे। अनुपूर्वी संक्रमण में कौन सी प्रकृति किस में जाएगी उसकी बात है। फिर से पढ़ते हैं, स्त्री और नपुंसक वेद का तो पुरुष वेद ही में, पुरुष वेद छह हास्यादिक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध का संज्वलन क्रोध ही में। देखो यहाँ लिखा है ना, फिर संज्वलन क्रोध अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मान का संज्वलन मान में। अभी ये जो सारा उपशमने का भी कार्य हो जाएगा, उसी समय कुछ परमाणु संक्रमित भी होने वाले हैं। तो कौन से परमाणु, कौन से कर्म, कौन सी प्रकृतियाँ किसमें संक्रमित होगी, उसका यहाँ बात हो गई। पूरा का पूरा संक्रमण नहीं हो रहा है, कुछ परमाणु संक्रमित हो गए, शेष परमाणु उपशमित हो गए, पर जब तक उपशमित पूरे नहीं हुए तब तक उसका संक्रमण भी कुछ ना कुछ चल रहा है। सब साथ में चलेंगे, ये सभी करण एक साथ चल रहे हैं। ये कौन किसमें जाते हैं उसकी यहाँ चर्चा करें। संज्वलन मान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया का संज्वलन माया ही में, संज्वलन माया अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ का संज्वलन लोभ ही में संक्रमण होता है, अन्यथा नहीं होता, ये करण हुआ। अब कहते पहले संज्वलन लोभ का पांचवा पॉइंट, संज्वलन क्रोधादि में यानी अन्य सभी में और पुरुष वेद में संक्रमण होता था, क्योंकि हमने देखा था कि वहां बनने वाले में संक्रमण होता है। अब क्या होगा, अब इसका संक्रमण किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा नहीं, उसी क्रम से उसका संक्रमण हो सकता है एक ही दिशा में। अब लोभ के लिए कोई अन्य कषाय नहीं बचा कि उसमें वो संक्रमित हो जाए, तो लोभ का संज्वलन लोभ का अन्य किसी में भी संक्रमण नहीं होगा, ये एक करण। छठवां पॉइंट, अब नपुंसक वेद की उपशम क्रिया का प्रारंभ हुआ, ये करण हुआ। उपशम श्रेणी में अब एक एक प्रकृति का क्रम से उपशम हुआ, यानी वो प्रकृति एक समय दो समय तीन समय करके अंतर्मुहूर्त में पूरी की पूरी उपशमित हो जाएगी। यानी अभी उसमें से ना उदयना उत्कर्षण संक्रमण कुछ कुछ नहीं होगा, बस बनी रहेगी वहाँ अंतर्मुहूर्त तक उसका उपशम बना रहेगा, क्रम से एक एक प्रकृति का उपशम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले किसका उपशम शुरू हो जाएगा, नपुंसक वेद का, भले उसका उदय हो या न हो उसे कोई मतलब नहीं है। किसी का श्रीवेद का उदय होगा, किसी का नपुंसक का होगा, किसी का पुरुष वेद का होगा, परंतु उपशम सबसे पहले यहाँ नपुंसक वेद का उपशम चालू हो जाएगा। पहले बंद होने के पश्चात एक आवली काल व्यतीत होते ही उदीर्ण करने की समर्थता थी। ये कब थी, अरे मिथ्या तो गुणस्थान में सबके होती रही, जिसका बंद हुआ है भले उदय की अपेक्षा आबादा कितने ही हजार वर्षों की भी होती है, जैसे हमने मिथ्या में 7,000 वर्ष देखा और ज्ञानावरण आदि में 70 कोड़ाकोड़ी सागर और 7,000 वर्ष उसकी आबादा देखी। आबादा किसकी अपेक्षा, वहाँ कोई निषेक रचना नहीं, उदय की अपेक्षा। परंतु उदीर्ण होकर उसी बंधे हुए निषेक रचना में से कुछ परमाणु सत्ता में उदय में आने वाले के साथ आ मिलते हैं आवली के पश्चात, और उसकी उदीर्णा होकर उदय हो सकता है। इस समय बंधे हुए हमने जो कोई निषेक है, एक आवली के पश्चात उदीर्णा के द्वारा उदय रूप निषेकों के साथ उसका उदय आ सकता है। इसको कहते हैं एक आवली के पश्चात उदीर्णा होने का पहले नियम था, अब समर्थता थी, नियम था यानी समय में होता भी था, अब बंद होता है। उस बंद समय से छह आवली व्यतीत होने पर ही उदीर्णा करने की समर्थता होती है, यह एक करण हुआ। छह आवली तक उसकी उदीर्णा नहीं होगी, वो नीचे अपनी जगह छोड़कर उदीर्णा होकर उदय में नहीं आ सकती, एक पर्टिकुलर उसका कारण है। हाँ, अभी फिर इसको देखते, चार है ना आपके हाथ में, बोर्ड पर लिखा है कौन कौन से कर्ण देखे हमने। देखो पहले दो कर्णों को एक साथ बताया कि मोह का जो है, मोह ने अभी जो बनने वाला है जो, और इसका उदय भी चल रहा है, मोह का तो लता रूप, जिसको लता भाग रूप कहेंगे, एक स्थानीय बंद भी होता है और एक स्थानीय उदय भी होता है, ये यहाँ से शुरू हुआ है। अब तक दो द्विस्थानीय था, लता दारू रूप था, अब लता भाग रूप हो जाता है। तीसरा कर्ण कौन सा है? मोह का स्थिति बंद इस समय से संख्या हजार वर्षों का होने लगता है। वहां संख्या वर्ष कहा था, तो संख्या हजार वर्ष है एक्चुअल में। चारित्र मोनी का अनुपूर्वी संक्रमण होने लगता है, यानी विशिष्ट क्रम से उसका संक्रमण होगा। नपुसक वेद स्त्री वेद के परमाणु पुरुष वेद में ही चले जाएंगे, पुरुष वेद हास्यादि छह नौकशाएं संज्वलन क्रोध में ही जाएंगे, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो भी संज्वलन क्रोध में ही चले जाएंगे, क्रोध के क्रोध में। अब संज्वलन क्रोध किस में जाएगा? तो संज्वलन मान में, और उसी समय संज्वलन मान के अप्रत्याख्यान में संज्वलन के अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वो भी संज्वलन मान में, यानी जो संक्रमण और उपशम वगैरह सभी क्रिया एक साथ चलती रहेगी। यह अनुपूर्वी संक्रमण कौन सी प्रकृति किस में जाती है? देखो कैसे समझना, क्रोध है वो मान रूप, मान है वो माया रूप, माया है वो लोक। अब जो क्रोध है वो मान रूप होता है, उसी समय मान का प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान भी संज्वलन मान रूप होगा। जब संज्वलन मान संज्वलन माया रूप हो रहा है, तो पहले संज्वलन मान के अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तो उसमें हो गए, अब ये जो संज्वलन मान है और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया है, वो संज्वलन माया में जाएगा। अब संज्वलन माया किस में जाएगी? संज्वलन लोभ में, उसी के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभ भी संज्वलन लोभ में चला जाए। संज्वलन लोभ के लिए कुछ नहीं बचा, वो अपने रूप से रहे, उसका संक्रमण नहीं होगा। संख्यात वर्ष, संख्यात हजार भी संख्या की संख्या, अरे करोड़ों क्या कोड़ा कोड़ी वर्ष अगर होते तो भी संख्यात वर्ष ही कहते, अगर पल्ले या सागर कहते तो असंख्यात वर्ष हो जाते। शास्त्र में संख्यात वर्ष लिखा है, पर वो संख्यात हजार वर्ष ही है, आगे चलकर आएगा ये शब्द ही आता है, ये शास्त्र का ही शब्द है, अपने ओर से नहीं। हाँ, संख्यात हजार आता है क्योंकि आगे ज्ञानावरणा देखे लिए संख्यात हजार आया, तो इसका भी संख्यात हजार ही होगा। यहाँ इन्हें हजारों वर्ष ये भी संख्या की संख्या है, ये संख्या हजार को या संख्या को एक ही बात है यहाँ पर। हाँ, अनेक हजार इन्हें हजारों वर्षों का होगा, हजारों को ना, वो भी हजारों कहने से संख्यात वर्ष ही होगा, हजार ये संख्या संख्या की है, संख्या कहने से दो चार वर्ष का बंद यहाँ नहीं होगा, समझ में ही बात। हाँ, क्योंकि आगे चलकर वो कितना बंद होता है, क्या है, जब क्रोध का बंद रुकता है या पुरुष वेद का बंद रुकता है तो कितने वर्षों का होता है, वो तो आएगी बात, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी अभी अंतरकरण समाप्त तो हो चुका है और यहाँ पहला समय है, यहाँ की क्या पोजीशन है? तो मोहनीय का संख्या हजार वर्षों का बंद है, ज्ञानावरण और बाकी सभी शेष प्रकृतियों का असंख्यात वर्षों का, यानी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात वर्षों का बंद चल रहा है। कौन से कर्म संख्या हजार संख्या पर कब आते हैं, वो आएगी अभी क्रम से बात आएगी। आप कह रहे घाती की बात कर रहे, अघाती की बात नहीं है, अघाती में से क्या क्या बन रहा है बोलो, मैं बोलूँ ना फिर अघाते में से क्या क्या बन रहा है। हाँ उच्च पत्र बन रहे हैं और साका वेदनी है, उच्च गोत्र है, यश कीर्ति है, तीन ही तो बन रहे हैं, वो प्रशंस प्रकृति है, उसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं। और यहाँ जो अंतर भीतर है वो तो चारित्र मुनि में हुआ है। ये चारित्र मुनि की सभी जो सात कर्म किसमें है, चारित्र मुनि में तो है सारे, क्योंकि उसी में उपशमने का कार्य होने वाला है, अन्य किसी में नहीं होने वाला। बंदे की बात है, उदय तो ज्ञान आवरणादि हो गए है, उसमें क्या हो रहा है आपने पूछा, उसकी बात ही नहीं करे। उन सभी कर्मों में गुणश्रेणी हुई थी क्या नहीं हुई थी, सातों कर्मों में ऐसी गुणश्रेणी जो पहले हमने सॉरी पहले दिखाए थे वैसी गुणश्रेणी उनमें चली है, उनमें कोई अंतर हुआ ही नहीं है, तो उनकी गुणश्रेणी दर्शन के बाद और थोड़ी इतनी चलेगी और वो गलितावशेष रूप से चलेगी, उसमें आकर्षण होना गुणश्रेणी रूप से देना वो सब कार्य चल रहा है, वो सब उनके तो प्रॉब चलेगी, मोनी के तो रुकेंगे बीच में, मोनी के अनुभव कांडाघात स्थिति कांडाघात वगैरह रुकने वाले हैं, उनका तो प्रॉब चलेगा ज्ञानावरण। अब कौन से कहाँ रुकते हैं वो सब चर्चा आएगी, यानी बाकी शेष सात कर्म में हो ही रहा है, उसकी गुणश्रेणी ये सब चल रहा है, स्थिति कांडाघात उनका स्थिति बंध भी घटते जा, उनका भी स्थिति बंध की बात आएगी अभी, ज्ञानावरण का संख्यात हजार वर्ष तक कब आएगा उसकी भी चर्चा आएगी, फिर नाम गोत्र का संख्यात वर्ष हजार वर्ष कब आएगा उसकी भी चर्चा आएगी। अभी जो हम क्रम से जा रहे हैं, अभी तो नपुंसक वेद की उपशमना है, फिर स्त्री वेद की उपशमना, कौन से उपशमना के काल में कौन से कर्मों की स्थिति कितनी बंधेगी ये सब चर्चा आएगी क्रम में। उसमें भी है आपका ये प्रश्न है, तत्वा सूत्र में सूत्र है क्या लिखा है, हाँ शुक्ल ज्ञान हो पूर्व विदों को होता है, यानी जो शुक्ल ध्यान है ना, ध्यान के चार भेद है, कौन से, आध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, तो शुक्ल ध्यान किसको होता है, तो शुक्ल ध्यान आठवें नौवें दसवें गुणस्थान में ग्यारहवें और बारहवें में होता है, तो किसको होता है, तो पूर्वविदों को होता है, पूर्वविद किसको कहेंगे, या दस पूर्वधारी या चौदह पूर्वधारी, उनको पूर्वविद कहते हैं, यानी श्रेणी के पूर्व में उनके ये पूर्वविद, वो भले वो स्वयं जिसको कहेंगे बीज बुद्धि से स्वयं वो उनका क्षोभम बढ़ गया हो, या उन्होंने किसी शुद्ध केवल से सुनकर उनको ज्ञान हुआ, तो शुद्ध केवल यानी उनका शुद्धों का अभ्यास इतना होता है, बारहवें अंग में जो चौदह पूर्व है उसमें से जो दस पूर्वों का अभ्यास जिनका हुआ है उनको दस पूर्वधारी कहते हैं, और जिनका चौदह पूर्व का है उनको चौदह पूर्वधारी कहते हैं, उन्हीं वे ही जीव श्रेणी चढ़ सकते हैं, और हमें तो करना नियोग का इतनी अरुचि है क्योंकि हमको श्रेणी थोड़ी चढ़नी है, बाहर ये सबको शिवभूति की इतनी के प्रति अब देखो उनका शोषण बड़ा होगा ना उसमें, क्योंकि जब वो उनके ऐसा करते करते उन्होंने स्थिरता पाई, तो केवल वो बताने के लिए उसकी बात, वहां पर भी ऐसा आता है कि मिनिमम ज्ञान तो अष्ट प्रवचन माता का होना चाहिए उसी की बात आती है, परंतु ऐसे जीव की श्रेणी मान लेंगे तो ये तो ज्ञानावरणादि का अनुभव इतना घट रहा है उसका अर्थ क्या होगा, कितना कोई श्रेणी में ही मन परे ज्ञान अभिज्ञान भी उत्पन्न होता है, थोड़ा ही उसका यूटिलाइजेशन करें, वैसे इनका भी जो इस संबंधी ज्ञान का क्षोभन उनका भी होगा, ये नियम है, जैसे गणधरों के ये सभी कितना ज्ञान होना चाहिए, क्या चार ज्ञान के धारे और उनके कितनी बुद्धि, ये जब बीज बुद्धि वगैरह सब कोष्ठ बुद्धि है, उन्होंने तो अभी कुछ कहाँ सुना है, केवल ज्ञान वाणी कहाँ सुनी, वाणी भी गिरी भी नहीं थी, तो उन्होंने संयम धारण किया, एक मुहूर्त के अंदर उनकी ये सारी रिद्धियाँ प्रकट होती है, बुद्धि की इतनी सौक्षम प्रकट होता है, यानी उनकी कितनी स्थिरता और कितने वो जो जिसको कहेंगे ना कि वो विकास हुआ बिना सुने, अभी दिव्य ध्वनि गिरी भी नहीं थी, दिव्य ध्वनि तो उनके निमित्त से की, पर दिव्य ध्वनि गिरने के लिए वो कौन सा पात्र जीव होना चाहिए, कुछ चार ज्ञान का धारी और कितने विधियों के वो धारक है, एक केवल ज्ञान वृद्धि छोड़कर बाकी सभी रिद्धियां उनकी ऑलरेडी प्रकट हुई है, तब जाके उसमें से बीज जो ओंकार ध्वनि में से इतना अर्थ निकाल सकते हैं। और उसका भी एक नियम है, जो कीर्तन करके सामने दीक्षित होते हैं वहां जाके वही गंधर्व बन सकते हैं, ये धवला के नौवे पुस्तक में आए हैं। उनकी वो तो एक अंतर्मोड में जो पहले मिथ्या दृष्टि अन्य मति से आए थे, समय दर्शन प्राप्त करके संयम धारण करके अंतरंग में इसकी स्थिरता हुई कि उनके इतने ज्ञान प्रकट हो गए, सारे ज्ञान सुनकर थोड़े प्रकट हो गए। दस पूर्व का ज्ञान है तो कितने एक सेकंडों की बात है, वो तो ज्ञान थोड़ा ही घटेगा। और ये दस पूर्वधारी जो है उसमें भी भिन्न पूर्वधारी अभिन्न पूर्वधारी होते हैं। दस पूर्व है वो विद्यानुवाद का अभ्यास करने पर वो मैत्री विद्याओं का ज्ञान तो हो जाता है, कोई उसका यूटिलाइजेशन करने की सोचे इच्छा हो जाएगी तो भ्रष्ट हो जाते हैं, मिथ्या तो नहीं चले जाते। मुनियों के नहीं, ये तो भ्रष्ट हो गए उससे, वो तो कौन से अन्य के होंगे वो तो होते हैं सामान्य से उसका वर्णन इतना तीर्थंकरों में जैसे गंधर्वों की चर्चा आती है, हाँ वैसे उनकी भले वो वाणी फिरती है गौ या उनकी गंधकुटी होती है, परंतु उसके गंधर्वों की मुझे चर्चा मालूम होती है। हाँ वो शुद्ध केवली वगैरह होते होंगे वहाँ पर मालूम नहीं, और वो गंधर्व हो गए तो मोक्ष जाने का नियम होंगे, जो गंधर्व होते वो मोक्ष जाते ही जाते हैं। और अनुबद्ध केवली में केवल अनुबद्ध 12-12 वर्ष के लिए ना, बिना अनुबद्ध के भी कितने केवली हुए होंगे बीच में, उसकी संख्या नहीं आती है। ये बिना अनुबद्ध है वो 12 वर्ष के साथ वो नियम छोड़कर कुछ केवली हुए होंगे, उसमें से ये अर्थ निकाल सकते हैं। कितना समय बचा अभी, मैं थोड़े करेक्शन बताऊंगी, अभी दो तीन महीने अपना विषय नहीं चलेगा, पर मैंने 83 पेज पर डाला है। जो मुझे अभी मिल रहा है उसको मैं बताऊंगी। पेज नंबर 222 नीचे से चौथी लाइन, वहां नाम गोत्र का कुछ कम 4 दिन लिखा है ना, तो 4 वर्ष होना चाहिए। पेज नंबर 222 लास्ट टाइम हमने बोला था आपको, पहले जो पुराने यहाँ 2 बार शिविर हो चुके थे वहाँ कुछ करेक्शन बताए थे मैंने। 257 क्या करूँ बता, 222 के बाद 257 386 की टीका, उसमें पहली लाइन में लिखा है नाम गोत्र का पल्ले के असंख्यात भाग, वहां संख्या के भाग करना अ निकाल दो। पेज नंबर 257 हाँ 386 की पहली लाइन, नाम गोत्र का पल्ले के संख्या के भाग चाहिए, असंख्या भी हुआ है। और वैसा ही नीचे की गाथा में सेकंड लाइन अ निकालना, उसमें भी ब्रैकेट में जो देखे ना ज्ञानावर वगैरह उसके नीचे, वह भी पल्ले के वो भी संख्या पे चाहिए। क्योंकि वहां भी क्या है प्राकृत में संस्कृत श्लोकों में कुछ गड़बड़ी है, अभी उसकी बात छोड़ते हैं, दो तीन में बता दूंगी यहाँ। 285 हाँ 403 की टीका तीसरी लाइन, नाम कर्म की 16 लिखा है, उसके नाम कर्म की 13 चाहिए। पेज नंबर 285, 430 की टीका तीसरी लाइन, नाम कर्म की 16 लिखा है और नाम कर्म की 13 करना। निकालो, नीचे के टेबल के ऊपर जो लाइन है, अनंत गुणा क्रम सहित, पेज नंबर 305, नीचे के टेबल के ऊपर जो लाइन लिख रही है, अनंत गुणा क्रम सहित नीचे था, वो अनंत गुणाहीन क्रम सहित चाहिए, अनंत गुणाहीन। पेज नंबर 305, अब और दो तीन देखते हैं। 381, वो क्या है, खाली वो प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक है। 532 गाथा के ऊपर की लाइन निजपति लिखा है, निर्वजति है चाहिए। 381 वो तो उल्टा सुलटा हुआ है छपने में। पेज नंबर 381, 532 गाथा के ऊपर की लाइन निजपति लिखा है, वो निर्वजति है चाहिए। और ऐसा ही निर्वजति वाली भूल 382 पेज पर लास्ट लाइन में। तो 532 के ऊपर की लाइन मैंने बताया, गाथा के ऊपर की लाइन बता के बंद कर दी मैंने। 388 करना, 388 पेज, 388 पेज बीच वाला बड़ा पैराग्राफ है, पेज नंबर 388 ऊपर से तीसरा जो बड़ा पैराग्राफ है उसमें लिखे ना, पूर्व अपूर्व दृष्टियों के प्रमाण मात्र यहाँ गच्छ, और वहाँ एक गच्छ लिखा है, उसमें एक कम गच्छ लिखा, एक कम गच्छ के। पेज नंबर 388 बड़े पैराग्राफ की पहली लाइन, एक कम गच्छ, यहाँ तक आए अभी हम, बाकी बातें हम बाद में बताएंगे, और भी बहुत सारे करेक्शन बताएंगे, दोपहर में कुछ बताएंगे। बोलो 2400 भगवान।